कलियों में रस बहाने लगता था। तो भगवान से संपर्क होने पर वास्तव में जीव ग्लोरियस होता है, आनंदित होता है, सुखी होता है। सुखदेव गोस्वामी जब वन में घूम रहे थे, संसार को छोड़कर उपेक्षा करके, यहाँ तक कि अपने पिताजी के स्नेह में शब्दों की उपेक्षा कर चुके थे, सब कुछ की उपेक्षा, न खाना न पीना कुछ भी नहीं, कोई परवाह नहीं थी। ऐसे व्यक्ति को ही भगवान के गुरु ने ऐसे खींचा जबरदस्ती की वो एकदम परवश होकर के आ गए। इसे आक्षिप्त लिखा गया। आक्षिप्त कहते हैं जबरदस्ती किसी को घसीट करके ला देना। आत्मा राम मुनि बने हुए और वो अब आकर के गोपी जनों की बातें कह कह करके रोने लगे। जब सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे दसम स्कंद की, और महाराज ने परीक्षित ने पूछ दिया कि एक साल पहले घटना घटी थी, वो आज की घटना कैसे हो सकती है? ब्रह्ममोहन लीला, जो ब्रह्मा जी गाय बछड़ा चुराए थे और बच्चों को चुराए थे। यह प्रश्न सुनते ही सुखदेव गोस्वामी जी को समाधि लग गई और वो लीला में जा पहुंचे, बोलना बंद हो गया। महाराज परीक्षित तो बहुत शोक में हुए कि अब कौन कथा सुनाएगा, ये तो लीला में तल्लीन हो। तो कीर्तन जोर से चालू हुआ, मृदंग और झांझ बजने लगे, तब जाकर के फिर बहिर्मुख हुए। ये भागवत में लिखा गया। और जब वर्णन करते थे भक्तों के उद्गार भगवान के प्रति, जैसे गोपियों के उद्गार, तो सुखदेव गोस्वामी निरंतर आंसू से सने रहते थे, कहाँ गया आत्मा रामत्व। अब सब कुछ भूल गए, अब बहने लगे। भगवान के गुण ही ऐसे हैं, क्या कहा जाए। श्री गोपी जनों ने बहुत बहुत इस पर विपरीत भाव से कहा है कि श्री कृष्ण के गुण ऐसे हैं कि ये किसी को भी फंसा लेते हैं और अपनी दासी बना करके और फिर छोड़ देते। कि हमारा मन घर के काम धंधे में लग रहा था, गोपी जन कहती हैं कि जब भगवान रास लीला में गोपियों को लौटाने लगे, शुरू में ही लौट जाओ तुम, वृंदावन की शोभा देख ली, ये कर ली वो कर, तो गोपी जन कहते हैं कि चित्तम सुखे न भवता प्रहतम गृहे सुजन निर्विशति। हमारा चित्त तो पहले घर के काम धंधे में लगता ही था, लेकिन इसको आपने खींचा क्यों? हमारा मन घर में लग रहा था तो आपने बांसुरी द्वारा या मंद मुस्कान द्वारा, लीला द्वारा, जैसे तैसे आंखों के इशारे द्वारा हमारे चित्त को खींच लिया। चित्त को खींच लिया, हमारी दशा को आपने वैसी कर दी जैसे कोई पक्षी के दोनों पंख को तोड़कर कहे कि उड़ो। हमारे हाथ पैर तो आप तोड़ दिए, हमारा मन खींच लिए, अब हम ब्रज में जा नहीं पाएंगे। जाएंगे तो बिना मन के हम करेंगे क्या? वह इस तरह उलाहना देती। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम क्या तुम्हारे चित्त को खींचे, हम तो कुछ नहीं किए। कहते हैं आप में ऐसा आकर्षण ही, आपकी बांसुरी में, इसमें, उसमें। कभी कभी तो गोपी जन कहते आपका दोष नहीं है, आपके सौंदर्य का दोष है। आप इतना सुंदर हैं कि यह दोष है, आप क्या करें। और भगवान सुंदर है तो इसमें भगवान का क्या दोष है? कोई उनके सौंदर्य पर मर है या पीछे लगा रहे तो आप वो क्या करें, कुरूप बन जाएं। इतना कृष्ण विलक्षण है कि आत्मा राम मुनि उनके पीछे, लता पता भी उनके पीछे, पशु पक्षी उनके पीछे, जो देखा जो संपर्क में आया वो विशुद्ध हो गया। हरिणिया अपने पतियों के साथ भगवान के सौंदर्य को देखती थी और चरना छोड़ दी, गायें चरना छोड़ देती थी, बछड़े दूध पीना छोड़ देते थे। चरने में कितनी गाय की आसक्ति होती है, बच्चे दूध पीने में कितना आसक्त होते हैं गाय का, लेकिन वो जीवन का उतना रसमय कार्य भी भूल जाते थे। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा रामाष्ट मुनयो निर्ग्रंथा पुरुक्रमे कुर्वंत है तो किम भक्ति मिथम हो तो गुण है। ऐसा गुण ही है। तो गुण सुनकर कौन कौन भक्त हो गए? भगवान चैतन्य महाप्रभु गिनाए हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा कि मैं आपके गुणों को सुन करके अपने आसक्त हो गई और आपके रूप की कथा सुनकर मैं अपने आसक्त हो गई, मेरा मन निर्लज हो चुका है। तो आप इतने महान हैं फिर भी आपको पाने की मेरी लालसा है, आपके गुणों ने मुझे बाध्य कर दिया, और यदि आप नहीं आए तो मैं निश्चित आत्महत्या करूंगी। इस तरह का पत्र लिखना कितनी बड़ी बात, और वो भी सेना आ चुकी है, दूसरा दुल्हा बनकर आ चुका था शिशुपाल, इन भगवान के गुणों ने इस तरह पत्र लिखने के लिए विवश कर दिए। वो लिख तो गोपियों ने भगवान के गुण को देख करके, रूप को देख करके, गुण को सुनकर, रूप को देख करके, बांसुरी का स्वर सुन करके सब कुछ छोड़कर कृष्ण में अनुरक्त हो गए। चार कुमार भगवान के चरण गंध को सुनकर सब कुछ छोड़ दिए, ब्रह्म सुख छोड़कर भगवान में तल्लीन हो गए। सुखदेव गोस्वामी उसके अद्भुत प्रमाण है। वृंदावन की गौएं, वृक्ष, लता, कोई भी व्यक्ति ऐसा गुण है। अच्छा, जब इथम भूत गुण हरि ही, भगवान ऐसे गुण वाले है ही, तो निश्चित यह सिद्धांत यहाँ आ गया कि जो व्यक्ति भगवान के गुणों को कहेगा, प्रसारित करेगा, उससे बढ़ करके भगवान का प्रिय कोई नहीं हो सकता। इसकी आवश्यकता है कि लोगों को बताए जो लोग कृष्ण के विषय में जानते नहीं। कभी कभी तो लोग सोचते हैं कि और लोग जैसे अन्य लोगों को भगवान कह दिया जाता है, वैसे भगवान कृष्ण को भी कह दिया जाए, और ऐसे भी कहते आप लोग तो कृष्ण के भक्त हैं, हम तो दूसरे के तो समझते नहीं। इसलिए भगवान के गुणों के वर्णन की आवश्यकता है। इस सप्ताह में खूब अच्छी तरह से भगवान के गुणों का वर्णन किया जाएगा। वर्णन करने वाले देखिए कौन कौन लोग हैं, गिना रहा। सुध गोस्वामी तो कहते ही जा रहे हैं, सबकी बातों को वो अपनी बात में कहेंगे, कभी कभी अपना अपनी तरफ से बोलते हैं भगवान के विषय में। अर्जुन के मुख से सबसे पहले भगवान के गुणों का वर्णन है, सातवें अध्याय। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा तो उस समय कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए उनकी शरण ले रहे हैं, पांच श्लोक में। तो अर्जुन सबसे पहले वक्ता है कृष्ण के गुण के इस प्रसंग में। इसके बाद उनकी माँ है, अर्जुन की माँ, अर्जुन जैसे महान भागवत, भागवत परिकर, भागवत पार्षद की माँ बहुत अनुभवी महिला थी, बहुत बड़ा बड़ा राजनीति का चक्र उसने देखा था। वैसे राजर्षि की पत्नी थी जो असमय में विधवा हो गई, और उसके बच्चों को मारने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया, लेकिन भगवान कृष्ण अद्भुत स्नेह किए उससे, अपनी माता से भी बढ़कर। तो उसने अपने जीवन का अनुभव दिया है, और जीवन का अनुभव मतलब कृष्ण के विषय में उसने अपना मत दिया, कृष्ण आप क्या हैं, ऐसे वो सामने बात कर रही है, आप क्यों अवतार लेते हैं, आपकी ये लीला, आपकी वो लीला, तुलना भी करती है कि देवकी आपकी माँ है, मैं आपकी बुआ हूँ, लेकिन आपने अपनी माँ से भी ज्यादा स्नेह मुझे दिया है, अधिक उपकार किया। तो कृष्ण तत्व को खूब भली भांति परखा कुंती महारानी ने, उनके पुत्रों के साथ बहुत निकट का संबंध था, और जिनके पिताजी भाई थे कुंती के, कृष्ण के साथ क्या संबंध बाकी रहा है, बहुत निकट से समझे थे। जिस दिन कृष्ण उखल में बांधे गए थे, उस दिन कुंती नंद महाराज के यहाँ गई थी मथुरा से, उसने आंख से इस लीला को देखा था, इसलिए उस लीला की चर्चा अपनी स्तुति में कर रही। जिस समय गोपी जशोदा ने आपको बांधने के लिए रस्सी उठाया था, उसमें आपकी क्या दशा हो गई थी, मैं तो बहुत भ्रम में पड़ जाती हूँ कि एक बार इस विश्व युद्ध के आप नायक बने, इतने इतने बड़े बड़े महारथियों के महान अस्त्रों से हमारे पुत्रों की रक्षा किए, और उस समय रस्सी उठाते ही आप इतना भयभीत होकर रो रहे थे, निश्चित ही वह आपका नाटक नहीं था, वास्तव में आप रो रहे थे। तो उस लीला को और ऐश्वर्य की लीला को कुंती महारानी देखी थी, ब्रह्मास्त्र किस तरह आए थे आकाश में और कृष्ण ने किस तरह पांचों ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया और उत्तरा के गर्भ में भी जाकर नष्ट किया, कुंती महारानी पूरा इस बात को समझ रही थी, तो उन्होंने वर्णन किया। इसके बाद द्वादश भागवतों में से महाभागवत भीष्म पितामह अपना अनुभव कृष्ण के विषय में व्यक्त करेंगे और उनका अनुभव समस्त राजर्षि ब्रह्मर्षि आदि की सभा में हुआ था, सब लोग जुटे थे। सुखदेव गोस्वामी भी वहां जाकर सुन रहे थे, भगवान परशुराम जी आए थे, नारद जी, वेदव्यास जी, धौम्य, ये सब ऋषि मुनि आए थे वहां। सर्वे शब्द का प्रयोग करते हैं शुद्ध गोस्वामी, सभी ऋषि मुनि आए। तो ऋषि मुनियों की सभा में कुरुक्षेत्र की भूमि में भीष्म पितामह कृष्ण का वर्णन कर रहे थे, डायरेक्ट कृष्ण के सामने उन्होंने अपने जीवन का अनुभव दिया। और इसके बाद फिर शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं, इसके बाद है हस्तिनापुर की नारियों का कृष्ण के विषय में मंतव्य, और वे छतों पर चढ़कर राजपथ पर चलने वाले कृष्ण को अंगुली से दिखा दिखा कर कहते, जानती हो सखी कौन पुरुष है, ये कौन है तुम जानती हो? कृष्ण के तेज और सौंदर्य से और सब स्त्रियां चकित थी, बहुत चकित थे, इसलिए उसका समाधान करते हुए अन्य नारियां बोलते हैं, जानती हो सखी कौन है? ये है साक्षात भगवान। स्त्रियों ने निश्चित ही कई जन्मों तक तप किया होगा, व्रत किया होगा, दान किया होगा, तीर्थों में स्नान किया होगा, जिनके साथ इस पुरुष ने पाणी ग्रहण किया। और वास्तव में सबसे सौभाग्यवती कोई सौभाग्यशाली कोई जीव है तो भगवान की पत्नियां हैं, वो कृष्ण की सेवा करने का उनको पूरा पूरा अवसर है। वो कंघी करती हैं, कृष्ण को पंखा डुलाती हैं, चरण दबाती हैं, भोजन बनाती हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो नारी होने से उनके हृदय में यह पश्चाताप हो रहा है कि हमें क्यों नहीं विधाता ने सौभाग्य दिया। इस तरह भगवान सुंदर, तो उनके मुख से वर्णन। इसके बाद द्वारिका के लोगों के मुख से कृष्ण वर्णन आएगा। तब शुद्ध गोस्वामी अंत में अपना फाइनल कंक्लूजन दिए कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण को स्त्रैण समझते हैं वे कितने माया में हैं। इस सिद्धांत को वे कहे अंत में, भगवान की लीला का द्वारिका में पत्नियों के साथ जो लीला है उसका संक्षेप में वर्णन किए। ये सब प्रसंग आएंगे भगवान के ये गुण, ऐसे तो पूरा भागवत भरा पड़ा है, समर्थ नहीं है किसी के कहने की और न सुनने की, लेकिन फिर भी जितना भी श्रवण कीर्तन किया जाए उतना ही पूर्ण है, अपने आप में वह पूर्ण है। तो आप सबसे आग्रह है कि आप अपने बंधु बांधवों को लाइए, समय तो एक एक मिनट बीत रहा है, इन भगवान कृष्ण के विषय में बड़े बड़े लोगों का अनुभव सुन लिया जाए। यदि हम लोग भीष्म पितामह के मुख से सुनेंगे, माता कुंती के मुख से सुन लेंगे, तो आजकल के दुष्टों के मुख से कृष्ण के विषय में कोई बात निकलेगा तो हमारे मन को कोई उसका वैल्यू नहीं रहेगा। कृष्ण के विषय में आजकल भी लोग बोला करते हैं। एक महाखल ने, महादुष्ट ने एक ग्रंथ लिखा है, श्री कृष्ण की आत्मकथा, यदि आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, लिखने वाला भी वो बिहारी बोका है, बिहार का है। तो वो लिखा है कई बात, मतलब कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं शुरू से अंत तक, मैं ऐसे मथुरा में जन्म लिया, मेरे सामने ये परिस्थिति थी, ये था वो था, ऐसे किया वैसे किया ये किया, उसके मन में जो आ रहा है वही कृष्ण के मुख से बोलता जा रहा। मैं डालमिया नगर डेहरी अनशन गया था तो एक व्यक्ति ला करके हमको दिया कि स्वामी जी आप ये पढ़े हैं किताब। मैंने कहा कौन किताब है? तो कृष्ण की आत्मकथा है। कृष्ण तो आत्मकथा गीता के रूप में किए है, तो अपनी कथा भगवान गीता के रूप में बोल रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? नहीं आप इसको पढ़िए तो। वो कहने लगा इसको आप पढ़िए तो। मैं कहा मैं देखना नहीं चाहता, पढ़ने की बात तो दूर है, फिर भी कहा दीजिए देखता हूँ। मैं देखा केवल एक पैसे मुझे बहुत घृणा है, मैं झटक कर किताब फेंक दिया। कहा इसको लिखा कौन, कृष्ण लिखा कि कोई दूसरा लिखा है? दूसरा व्यक्ति कृष्ण बनकर लिख रहा है ना, उसको लिखना चाहिए था मेरी आत्मकथा, कृष्ण की आत्मकथा नहीं। कृष्ण के विषय में बड़े बड़े लोगों ने कहा है और श्रीमद् भागवत में सबका प्रवचन रखा गया है, कोई शोध करने की आवश्यकता नहीं है और भक्तों को चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण के विषय में सुखदेव गोस्वामी बोले हैं, वसुदेव जी बोले हैं, माता देवकी बोली है, गोपियों ने कहा है, सखाओं ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव ने, इंद्र ने कहा है, मुचकुंद महाराज ने कहा है, बहुत लोगों ने कृष्ण के विषय में प्रवचन किया है, वो पर्याप्त है। लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है कि हम उसे ग्रहण करें, स्वयं भक्ति में दृढ़ होने के लिए और दूसरों को भी भक्त बनाने के लिए कृष्ण के इन गुणों का श्रवण बहुत आवश्यक है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आए, लेकिन और अधिक धन्यवाद दूंगा यदि आप रेगुलर आते रहेंगे। भगवान विट्ठल की शरण में हम लोग हैं। ये रखु माई का नाम रुक्मिणी जी का अर्थ है क्या है, कि दूसरी कोई थी रुक्मिणी जी ने? तो श्री श्री विट्ठल और रुक्मिणी जी की शरण में हम लोग हैं, उन्हीं की कथा चल रही है। बहुत सुंदर स्थान है, इस स्थान पर इस तरह की कथा बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का, जो सुंदरता है वास्तव में। तो फिर दूसरी सिटिंग में आप राइट टाइम आएंगे इसकी अपेक्षा की जाती है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरेर्गुणाक्षिप्तमतिः भगवान् बादरायणिः अध्यगान महदाख्यानम् नित्यं विष्णुजनप्रियः। हरेर्गुणाक्षिप्तमतिः भगवान् बादरायणिः अध्यगान महदाख्यानम् नित्यं विष्णुजनप्रियः। हरे हे सर्वाकर्षक हरि के गुणाक्षिप्तमति हे गुणों द्वारा आकृष्ट मति भगवान बादरायणी ही भगवत भक्ति में आसक्त बादरायण पुत्र सुखदेव अध्यगात अध्ययन किए महद आख्यानम इस महान ग्रंथ का नित्यम सर्वदा विष्णु जनप्रिय भगवान विष्णु के जन जिन्हें अति प्रिय हैं अथवा जो भक्तों के प्रिय हैं। तो सौनक जी का प्रश्न है कि सुखदेव गोस्वामी क्यों भागवत पढ़े, भक्ति क्यों करते हैं? उसका तो उत्तर हुआ कि भगवान के ऐसे गुण हैं कि कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है। तो दूसरा प्रश्न इसमें छिपा हुआ है, श्रीधर स्वामी जी दूसरा प्रश्न उत्थापन करते हैं कि ननु भक्तिम कुर्वन्तु नाम एतत् शास्त्राभ्यासे सुखस्य किम् कारणम्। भक्ति करे कोई बात नहीं, भक्ति हम भी समझते हैं कि भक्ति सभी लोग करते हैं, आत्माराम मुनिगण भी भक्ति करते हैं, ठीक है, लेकिन इस शास्त्राभ्यास की क्या आवश्यकता है? भक्ति का सभी अर्थ जनरल जानते हैं, कुछ जप करना, भगवान की सेवा करना, प्रणाम करना, भोग खाना, भगवान का प्रसाद खाना, अपने को दास मानना। तो क्या यह आवश्यक है कि भक्ति करने वाले ये शास्त्राभ्यास करें? क्या शास्त्र के अभ्यास करने की आवश्यकता? शास्त्राभ्यास का मतलब है श्लोकों को रटना, उनकी व्याख्या करना और समुचित ढंग से उसको गुरु के द्वारा सुनना। इसकी क्या आवश्यकता है? तब इस दूसरे प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में देते हैं कि हरे है गुणाक्षित मति ही भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यान नित्यम विष्णु जनप्रिय। नित्यम विष्णु जनप्रिय भगवान बादरायणी ही हरे गुणाक्षित मति ही सन इदम महदाख्यानम अध्यगात। सुखदेव गोस्वामी नित्यम विष्णु जनप्रिय है, विष्णु के जन उनको बहुत प्रिय लगते हैं। सुखदेव जी का स्वभाव विशेष करके वे कथा के व्याख्यान आदि द्वारा भक्तों का संग चाहते हैं। दो तरह से, तो भक्त व्याख्यान करें तो उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हो, या वे व्याख्यान करें तो भक्तों से बैठने का, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हो। इस संसार में हम लोग देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई अपना प्रिय समाज होता है, और जब ही घर गृहस्थी के काम से छुट्टी मिलती है बस अपनी कंपनी में हाजिर हो जाता है, उसे वह समाज बहुत प्रिय लगता है। कभी कभी तो माता पिता को बड़ी चिंता होती है, रोकते हैं कि क्यों चला जाता है ऐसे समाज में, क्योंकि नित्यम तत् समाज प्रिय है, वही समाज उसको प्रिय है, वहां उसको अपने मन की बात कहेगा और अपने मन के अनुकूल बात सुनेगा, फिर मंत्रणा होगी, उसके अनुसार कुछ कार्य करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे जो भी करना है। तो जिसको विष्णु प्रिय होगा तो विष्णु जन भी उसे प्रिय होंगे। और नित्यम या नहीं कि चलो दो चार घंटा बैठे भक्त के साथ, इसके बाद अब उब गए, अब प्रिय नहीं लग रहे हैं, अब दूसरा काम करेंगे। सुखदेव गोस्वामी के लिए कहा जा रहा है नित्यम विष्णु जन प्रिय, विष्णु जन प्रिय यस्य, विष्णु के जन जिसे प्रिय, वैष्णव जिसे प्रिय। सुखदेव जी हमेशा चाहते थे कि हम वैष्णवों के साथ बैठें, उनसे भगवान की वार्ता करें, सुने, उनके साथ रहें, यही उनकी इच्छा रहती थी। और वैष्णव जन भी हमेशा चाहते थे कि हमें सुखदेव गोस्वामी का संग मिले, उनके साथ बैठें, भगवान की बात करें, और सर्वदा इसको विष्णु जन प्रिय कहते और नित्यम। सुत गोस्वामी देख चुके हैं अपनी आंख से कि वैष्णव जन कितना प्रिय है सुखदेव गोस्वामी के लिए, और सुखदेव गोस्वामी कितना प्रिय हैं वैष्णवों के लिए, ये उनके साथ रहे हैं, कथा भी 7 दिन सुने, जब परीक्षित महाराज को उपदेश कर रहे, कथा सुना रहे, और सुखदेव गोस्वामी के शिष्य भी हैं, डायरेक्ट शिष्य हैं, भगवान वेदव्यास देव के भी शिष्य हैं, सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं, और भी मुनियों के शिष्य हैं। सुत गोस्वामी बहुत बड़े क्वालिफाइड व्यक्ति, भागवत के प्रारंभ में ही इनके गुणों का वर्णन किए हैं शौनकादि ऋषि लोग कि आप कितना पढ़े हैं, कितनी व्याख्या किए हैं, क्या क्या जानते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि सब मिलाकर जो जो मुनि जो कुछ जानते हैं आप सब जानते हैं अकेले, यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्य च मुनि सुत परावर विदो विदु वेत्थ तुम सम तत् सर्वम, आप सब जानते हैं। वो लोग तो मुनि लोग तो एक एक विभाग जानते हैं, ये जानते हैं, कोई वो जानते, आप सब जानते हैं। इसलिए आप शास्त्र का अर्थ जानते हैं, बताइए कि शास्त्र का सार क्या है और एकांतिक श्रेय क्या है।
तो सुखदेव गोस्वामी से इन्होंने सुना है और भगवान वेदव्यास देव से भी सुना है। वास्तव में यह आध्यात्मिक जीवन, भगवान की भक्ति इतना व्यापक है कि एक जन्म ही नहीं, हमारा कई जन्म लगेगा इसके आस्वादन में और फिर भी तृप्ति नहीं होगी। शरीर बदल जाएगा लेकिन भगवान के प्रति भक्ति में कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। इसलिए इसके विषय में बहुत सुनने की आवश्यकता है, बहुत बहुत सुनना। तो सूत गोस्वामी सुने थे, उन्होंने देखा था, तो जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी नित्यम विष्णु जन प्रिय है, वैष्णव उनसे प्रेम करते हैं और वे वैष्णवों से प्रेम करते हैं। और भगवान बादरायणी है, ऊपर भगवान बादरायण आया था और यहाँ भगवान बादरायणी ही, मतलब बादरायण के पुत्र बादरायणी। भगवान श्री कृष्ण के दया और सौंदर्य को सुन करके इतना आकृष्ट हो गए, इतनी ललक बढ़ गई कि इसके चलते उन्होंने इस महान ग्रंथ का अध्ययन किया। इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में जो भक्त भगवान का होगा, भक्ति करेगा, तो उसको कृष्ण के गुणों को सुने बिना, कहे बिना, चिंतन किए बिना उसे नहीं रहा जाएगा, उसकी आसक्ति होगी। तो उसकी आसक्ति, उसका हैंकरिंग, उसकी लालसा पूरी होगी श्रीमद् भागवतम से, और उसमें भी दशम स्कंध में पूरी लालसा होगी, पूरी संपूर्ण लालसा की पूर्ति दशम स्कंध से होती है। भगवान के गुणों का वर्णन है ऐसे प्रथम स्कंध से द्वादश स्कंध तक श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसमें एक अक्षर कुछ नहीं वर्णन किया गया है। फिर भी प्रकट जो उनके खिले हुए गुण हैं, उनकी रसिकता, उनका माधुर्य, सौंदर्य, करुणा और अपनी दिव्य धाम में रहने वाले परिकरों के साथ उनका जो व्यवहार दशम स्कंध में परिस्फुट हुआ, तो वह और अधिक मन को खींचता है। भगवान के साथ किस तरह बिना संकोच के रहा जा सकता है, रहते हैं उनके परिकर, इसको उन्होंने प्रकट किया जीवों को अपने तरफ खींचने के लिए। यहाँ विट्ठल देव को भी हम लोग देखते हैं कि इनके पास पहुंचने में किसी को कोई संकोच नहीं, कोई भी जाकर के उनका स्पर्श सुख प्राप्त करता है, तिलक भी दे देता है, माला पहनाता है, इनके यहाँ बहुत बहुत भेदभाव नहीं। तो इस तरह से ब्रज की जो लीला है, और वास्तव में भगवान सर्वसुलभ है लेकिन परिकरों के व्यवहार से उसको उन्होंने प्रकट किया कि देखो मैं इस तरह सुलभ हूं, हमारे संग खेला जा सकता है, गलबा ही दिया जा सकता है, हमको रस्सी में बांधा जा सकता है, चोर चोर कह करके भर्त्सना भी की जा सकती है, ये सब लीलाएं आई है। तो इन गुणों ने सुखदेव गोस्वामी को विवश कर दिया है ग्रंथ पढ़ने के लिए। तो जो भागवत नहीं पढ़ते हैं, तो इससे सिद्ध हुआ कि उनका मन पूरा पूरा भगवान के गुणों से आकृष्ट हुआ है नहीं, है ना? इस तरह से ये सिद्ध होता है, जिसका मन आकृष्ट होगा बिना पढ़े नहीं रहेगा, उसे संतोष ही नहीं हो सकता, अवश्य पढ़ेगा, अध्ययन करेगा। तो इस तरह सुखदेव सुत गोस्वामी सौनक जी के प्रश्नों का उत्तर देकर सुत गोस्वामी अब उनके पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सौनक जी ने पूछा था कि महाराज परीक्षित क्यों आमरण अनशन व्रत किए, गंगा जी के तट पर बैठे, तो तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृणीहि न। परीक्षित महाराज के आश्चर्यमय जन्म की कथा हमें सुनाई है और उनके कर्म की और जथैव निधनम गतः उसे सुनाइए। तीनों आश्चर्यमय है, महाराज परीक्षित का गर्भ में रहना आश्चर्यमय, उनका जन्म गर्भ में थे तभी ब्रह्मास्त्र का आघात हुआ और भगवान उनकी माँ के पेट में जाकर के उनको दर्शन दिए। बड़े बड़े योगी लाखों वर्ष तपस्या करके भी जिस प्रभु का दर्शन नहीं पाते हैं, वो भगवान परीक्षित को जाकर गर्भ में दर्शन दिए। बहुत सुंदर दर्शन के साथ, सुदर्शन के साथ हरीश्वरी जी ने लिखा है कि अन्य लोगों को दर्शन होता होगा, दर्शन भर होता है, लेकिन परीक्षित महाराज को सुदर्शन हुआ, सुदर्शन के साथ दर्शन हुआ सुदर्शन चक्र से भगवान ने रक्षा किया। और परीक्षित महाराज जीवन भर याद करते थे उस चक्र का घुमाना, गदा का